بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. وہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جس کے انتظار اور اشتیاق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ رجب سے اس کا انتظار شروع فرماتے تھے. اب اس مہینے کا بیشتر حصہ گزر چکا، 17 روزے اللہ تعالیٰ نے پورے کرا دیے، زیادہ حصہ گزر چکا ہے، لیکن اب بھی 12 یا 13 دن باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دن اور یہ راتیں بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی 3 دن کے بعد رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس آخری عشرے کو اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے اور پورے رمضان کا عطر ہے جس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اسی آخری عشرے کے اندر اعتکاف بھی مسنون ہے، اس لیے آج مجھے آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتوں کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہے. ایک بات یہ ہے کہ عام طور سے ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں جو لوگ، وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ زکوٰۃ کوئی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ ملا کر اس کو ذکر کیا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تقریباً 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دونوں عبادتوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بتلانا مقصود ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نماز کا فریضہ ہے، دونوں ساتھی ہیں. یہ ایک مسلمان کے اعمال میں یہ دونوں عمل مرکزی اور بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. قرآن کریم نے یہ فرمایا، جو کافر جن سے جہاد ہو رہا ہو، جن سے قتال ہو رہا ہو، اگر وہ اس ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، تو اس کے ساتھ صرف بھی اسلام مسلمان لے جانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ وہ توبہ بھی کر لیں اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دین کے بھائی بن جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی مسلمان ہونے کی نشانی ہے، مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ یہ شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ کہ بالکل جو سب سے پہلی سورتیں نازل ہوئی ہیں سورہ مزمل، سورہ مدثر کے بعد کہتے ہیں دوسری یا تیسری سورت یہ ہے جو نازل ہوئی تھی، اس میں بھی یہ حکم موجود ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی فرضیت بالکل اسلام کی ابتدا سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور یہ اسلام کا ایک ترین شعار ہے. نماز اگر جسمانی عبادت ہے جو جسم سے ادا ہوتی ہے، تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اللہ نے جو کچھ بھی مال انسان کو عطا فرمایا اس میں سے کچھ حصہ نکالنا پڑتا ہے زکوٰۃ کے لیے. اور احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کو طہارۃ للاموال قرار دیا گیا ہے، کہ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے اس زندگی میں، اس کمائی کو پاک کرنے والی چیز زکوٰۃ ہے. پاک کرنے والی کیسے؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے، ان الذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم تقوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اور سونا چاندی سے مراد پیسہ، وہ جس شکل میں بھی ہو، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. کیا دردناک عذاب؟ یوم علیہا فی ناری جہنم. آخرت میں یہ ہوگا کہ سونا چاندی یا جو کچھ بھی سامان یا جو قابل زکوٰۃ چیزیں ہیں، وہ اگر ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی تو قیامت کے دن ان سونا چاندی کو یا ان سکوں کو یا ان کو آگ پر تپایا جائے گا. اور پھر تقوا بہا جباہم جنوبہم ظہورہم، اور اس کے ذریعے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، اور ان کی پشتوں کو. یہ انجام ہونے والا ہے سونا چاندی جمع کرنے والوں کے لیے. سونا چاندی سے میری مراد ہر قسم کا مال ہے جو تجارت کا مال ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں سیطب، قرآن ایک آیت میں سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ جتنا تم نے روپیہ پیسہ سونا چاندی جمع کیا، یہ سب تمہارے گلے کا توق بنے گا قیامت کے دن. گلے کا توق بنے گا، اس کی حدیث میں تفصیل آئی ہے، اللہ بچائے، کہ ایک سانپ کی شکل میں آئے گا، گنجا سانپ، وہ سانپ گلے میں لپٹ جائے گا، اور گلے میں لپٹ کر اس کے منہ پر ڈنک مارے گا اور کہے گا، یہ ہے، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، کیونکہ تو نے زکوٰۃ ادا کیے بغیر جمع کر رکھا تھا. تو بڑی سخت وعیدیں ہیں زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر، لہذا خوب سمجھ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اتنا بڑا فریضہ قرار دیا کہ نماز کے ساتھ اس کو ہمیشہ ذکر کیا ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے پر شدید وعیدیں ہیں جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی. اور اصول یہ بتا دیا، کوئی بہت زیادہ بہت مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ہر اس شخص کے ذمے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی या उसकी कीमत का रुपया या उसकी कीमत का सामान तिजारत मौजूद हो। 52.5 तोले चांदी की कीमत आजकल के हिसाब से 1,39,000 रुपए बनती है, 1,39,000 रुपए। अगर किसी शख्स के पास 1,39,000 रुपए है, अपने पास रखे हैं, बैंक में रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। 1,39,000 से कम है तो किसी उस पर ज़कात वाजिब नहीं, लेकिन 1,39,000 रुपए अगर किसी के पास नकद हैं, उसके अकाउंट में रखे हुए हैं, या 1,39,000 रुपए के उम्र की कीमत का सामान तिजारत उसके पास मौजूद है, किसी ने छोटी सी दुकान ही खोली हुई है मसलन, और उस दुकान के अंदर 1,39,000 का सामान मौजूद है बेचने के लिए, उस पर भी ज़कात वाजिब। लेकिन उस पर ज़कात वाजिब है सिर्फ कितनी, 40वां हिस्सा, 2.5%। यानी अगर 1,39,000 रुपए का कोई शख्स मालिक है तो 1,00,000 पर 2,500 रुपए, 1,00,000 पर 2,500 रुपए, और 39 के उसी हिसाब से लगा लो तो सब मिलाकर हो सकता है 3,500-3,000 रुपए बन जाएंगे। 1,39,000 का बंदा मालिक है और वो उसकी जरूरियात असलिया से ज्यादा है तो उसके ऊपर 3,000 रुपए ज़कात वाजिब हो जाती है। ये अल्लाह ताला ने कोई बहुत बड़ी रकम नहीं रख देती, लेकिन अगर ये हर मुसलमान इसको अदा करने का एहतमाम कर ले तो मैं दाने के साथ कह सकता हूं कि मुल्क में कोई गरीब बाकी नहीं रहेगा, मुल्क में कोई गरीब बाकी नहीं रह सकता अगर ज़कात ठीक ठीक अदा कर दी जाए। अफसोस है कि इस अजीम शान फरीजे की अदायगी में बहुत ही गफलत भी होती है और उसके सही इंतजाम भी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इतना अहम फरीजा उसके जरिए हम अभी तक अपने यहां गुर्बत खत्म नहीं कर सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। अब इसमें एक बात और बतानी जरूरी है कि ज़कात इंसान के जिम्मे उस तारीख में सबसे पहले फर्ज होती है जिस तारीख में उसके पास 1,39,000 रुपए के बराबर पैसा, सोना चांदी जेवर या सामान तिजारत उसकी मिल्कियत में आया। जिस तारीख में सबसे पहले वो साहिब निसाब बना, इसको साहिब निसाब कहते हैं, जिसको जो सबसे पहले जिस तारीख में साहिब निसाब बना उस तारीख में वो उसे अपना हिसाब करना चाहिए हर साल। लोग समझते हैं जी हमेशा रमजान में ही करना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है। आप बालिग होने के बाद सबसे पहले जब साहिब निसाब बने जिस तारीख में, वो तारीख आपकी ज़कात की तारीख है। अगर वो याद ना हो चलो तो फिर ऐसे ही अंदाजे से कोई तारीख मुकर्रर कर लो तो उसकी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह माफी हो जाएगी, लेकिन सारा हिसाब उस तारीख होगा। फर्ज करो वो तारीख यकुम रमजान है मिसाल के तौर पर, तो यकुम रमजान के तारीख में देखो कि आज मेरे पास कितनी नकदी है, कितना बैंक अकाउंट है, कितना मेरे पास सामान तिजारत है, कितना मेरे पास सोना चांदी है। ये चार चीजें हैं जिस पर ज़कात वाजिब होती है। सोना चांदी, जेवर हो चाहे नकदी बैंक अकाउंट और सामान्य तिजारत यानी कोई ऐसी चीज जो बेचने के लिए आपने खरीदी हो, अगर ये 1,39,000 तक पहुंच जाती है तो उस पर ज़कात वाजिब। यहां लोगों में यह भी एक गलत फहमी पाई जाती है कि ज़कात के बारे में, बहरहाल हर मुसलमान जानता है कि साल भर किसी के पास माल रहा हो तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन माना साल भर रहने के यह है कि साल भर निसाब उसके पास निसाब का मालिक रहा हो, यह मतलब है। लेकिन बीच में जो आता जाता रहा उसका कोई हिसाब नहीं, आज इतने पैसे आ गए, कल जितने चले गए, फिर इतने आ गए, फिर उसने चले गए, इसका हिसाब करने की कोई जरूरत नहीं। जो तारीख मुकर्रर किया जैसे यकुम रमजान, तो यकुम रमजान को आपके पास जो बैलेंस है यानी जो नकदी रखी है, जो बैंक में पड़ा है, जो सामान्य तिजारत है, जो जेवर की कीमत है मौजूदा, या कोई और चीज आपने खरीदी हो, प्लॉट वगैरह खरीदा बेचने के लिए जो खरीदा हो, अगर यकुम रमजान की तारीख है और उसे एक दिन पहले भी 10,000 रुपए आ गए तो जरूरी कि 10,000 पर भी साल गुजरे, बल्कि वो उसी दिन उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी जिस दिन तारीख ज़कात है। हर हर रुपए पर ज़कात साल गुजरना जरूरी नहीं है, हर हर पैसे पर साल गुजरना जरूरी नहीं है, बल्कि निसाब अगर शुरू साल में भी था, आखिर साल में भी है, तो बीच में जो आता जाता रहा उसका कुछ हिसाब रखने की जरूरत नहीं। जो खा लिया वो खा लिया, जो खर्च कर लिया वो कर लिया, आखिरी तारीख जो है उस तारीख में देखो तो क्या बचा है। तो भाइयों, ज़कात का फर्ज होना तो उसी वक्त हो जाता है जब बंदा साहिब निसाब बनता है। अलबत्ता रमजान में इस वजह से लोग ज्यादा एहतमाम करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में अगर कोई आदमी कोई फर्ज इबादत अदा करता है तो वो 70 फरीजे के बराबर होती है अजर सवाब के एतबार। यानी अगर रमजान के अंदर 1 रकत पड़ी तो उसका सवाब 70 रकतों के बराबर है, फर्ज का जो फर्ज नमाज। लिहाजा ज़कात का भी अगर 1 रुपया दिया तो वो 70 रुपए देने के बराबर है, 1,000 दिया तो 70,000 देने के बराबर है अजर सवाब के एतबार से। इसलिए लोग रमजान को तरजीह देते हैं कि रमजान के अंदर ज़कात अदा की जाए ताकि उस पर 70 गुना सवाब मिले। लेकिन यह भी याद रख लेना कि यह उस वक्त है जबकि आप आदमी के पास रमजान से पहले भी देने को है, रमजान के बाद भी देने को है, जो जरूरतमंद है वो उसको उसकी जरूरत रमजान में सामने आई है। लेकिन बाद अवकात ऐसा होता है कि रमजान से पहले एक तंगदस्त आदमी है, जरूरतमंद आदमी है, ज़कात का मुस्तहिक है, उसके घर में फाका हो रहा है, आप कह दीजिए अभी मैं रमजान में दूंगा जब रमजान आ जाएगा, वो तो बेचारा फाके में मुतला है, पता नहीं वो उस फाका कशी में मरी ना जाए, आप कहते हैं जी मैं रमजान में जाके दूंगा ज़कात, तो ये जुल्म है जो शरीयत के अंदर बिल्कुल जायज नहीं है। जब जरूरत हो तो रमजान से पहले भी अदा किया जाए, लेकिन हां जब पहले की जरूरतें पूरी हो रही है तो रमजान में अदा करने में 70 गुना सवाब दिया जाए। आखिरी बात यह अर्थ करना चाहता हूं, यूं तो ज़कात के बहुत मुफस्सल अहकाम हैं, किताबें भी लिखी हुई है। हमारे मेरे बड़े भाई हज़रत माना मुफ्ती अहमद रफ़ी साहब दामद रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है अहकाम ज़कात के नाम से, मुख्तसर रिसाला है लेकिन ज़कात के सारे अहकाम बहुत जामे अंदाज में उसमें बयान फरमा दिया है। हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए, मसाइल जानने चाहिए। तो मसाइल तो बहुत है, कहां खर्च करें ज़कात? तो खूब समझ लीजिए कि ज़कात के सबसे पहले मुस्तहिक इंसान के अपने वो रिश्तेदार हैं कि जो गरीब हो। सबसे पहले इस्तेकाक जो है अपने रिश्तेदारों का होता है। दो रिश्ते तो ऐसे हैं कि उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। एक बाप बेटे को नहीं दे सकता, बेटा बाप को नहीं दे सकता। शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शौहर को नहीं दे सकती। बाकी जितने रिश्ते हैं अगर वो मुस्तहिक ज़कात हैं, साहिब निसाब नहीं है, चाहे भाई हो या बहन हो, चचा हो, भतीजा हो, फूफी हो, खाला हो, मर्द हो, औरत हो, अपने रिश्तेदारों में से अगर कोई गरीब है, गरीब होने के बाद साहिब निसाब नहीं है, तो उसको ज़कात देना अफजल है। उसमें दोहरा सवाब है, एक ज़कात का सवाब और दूसरे रिश्तेदारी के हुकूक अदा करने का सवाब, सिला रहमी का सवाब। तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक अपने रिश्तेदार है और अपने पड़ोसी, अपने पड़ोस में अगर गरीब लोग रहते हैं और बेचारों को बेचारे जरूरतमंद हैं तो पड़ोसियों का हक दूसरों पर मुकद्दम है। तीसरा हक जो है, तीसरे नंबर पर जो ज्यादा हकदार है, ये वो लोग हैं जो दीन के किसी काम के लिए निकले हुए हैं और दीन के काम में मशगूल होने की बिना पर ये रोजी कमाने से कासिर है। एक दीन का तालिब इल्म है, वो दीन को समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अपने घर बार को छोड़कर आया इसलिए कि उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने लिए रोजी कमाए, या कोई मुजाहिद है, जिहाद के रास्ते में निकला हुआ है और उसके पास इतना मौका नहीं है कि वो अपने रोजी कमाए, तो ऐसे लोग जो दीन के किसी काम में मशगूल होने की वजह से रोजी कमाने से रोजी ना कमा रहे हो, दीन के काम में लगे हुए हो, ये फिर तीसरा हक जो है उनका होता है। इसीलिए हमारे हजरत वालिद माजिद कद्दसल्लाहु तआला सर्रहू बानी दारुल रूम हजरत माना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो फरमाया करते थे कि किसी दीनी मदरसे के पढ़ने वाले तलबा को ज़कात देना, ये इसमें दो सवाब है, एक ज़कात की अदायगी का, दूसरे इल्म दीन की को इल्म दीन की तरक्की में हिस्सा लेने। इसी तरह आजकल जो मुजाहिदीन हैं फलस्तीन में जिहाद कर रहे हैं या जिनके ऊपर इसराइलियों ने बमबारी कर करके जिनको खानमा बर्बाद कर दिया है, जिनके बच्चे रोटी को तरस रहे हैं, जिनके जो फाको फाका कशी पर मजबूर हैं वो भी इसके बहुत अहम मुस्तहिकीन में से हैं आजकल के हिसाब से। तो इस लिहाज से आदमी को चाहिए कि अपनी ज़कात का हिसाब करें। ये जो लोग करते हैं कि अलटप बगैर किसी हिसाब के अंदाजे से ज़कात निकाल देते हैं, इससे बताओ, इससे अंदेशा रहता है कि फरीजा अदा होगा या नहीं होगा। एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए जिस पर ज़कात फर्ज है, कितना कितनी ज़कात मेरे जिम्मे फर्ज हुई, उसका पहले हिसाब लगाना चाहिए। हिसाब लगाने के बाद फिर उसकी अदायगी का इस तरह इंतजाम करना चाहिए जिसका मैंने अभी आप हजरात के सामने जिक्र किया। अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक अता करें।